नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाई। नगर निगम के उपमहापौर ने अलीपुर वार्ड स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र ने अपना 38वां वार्षिक दिवस मनाया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली रोहतक अंतर्राज्यीय ई बस सेवा की शुरुआत, मदनपुर खादर बस टर्मिनल का लोकार्पण और ईस्ट विनोद नगर डिपो के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया गया। एक रिपोर्ट।
इन ईवी बसों में सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, रियल टाइम ट्रैकिंग और दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं मदनपुर खादर बस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा के लिए टॉयलेट और पास सेक्शन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है तथा दिव्यांगजन के लिए अनुकूल रैंप बनाया गया है। इसके अलावा टर्मिनल के पास जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन प्रणाली भी स्थापित की गई है। इसी तरह नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में बायोमेट्रिक सिस्टम और चालक सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई बसों में शामिल होने से बसों की कुल संख्या 6,300 से अधिक हो गई है, जिसमें 4,500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर राजधानी को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अपने परिवहन विभाग के माध्यम से जिस ईवी पॉलिसी को दिल्ली के लोगों के लिए बनाया है, वो पूरे देश में किसी भी राज्य में ऐसी इफेक्टिव पॉलिसी कहीं नहीं बनी। 4,000 करोड़ का बजट 4 साल में दिल्ली की जनता पे खर्चने का सरकार ने मन बनाया है, क्योंकि ये दिल्ली वर्षों से पॉल्यूशन में, खराब हवा के घेरे में लिप्त थी, जिसमें दिल्ली का हर परिवार झेल रहा था दंश।
इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नई बसों और इंटर स्टेट सेवाओं से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
निरंतर दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की जो सुविधा देनी चाहिए, जो उनका हक था, उसके ऊपर काम कर रही है और ये बसों को जोड़ना और उनको सुविधा दिल्ली की जनता तक पहुंचे, उसके लिए ये बसों को आज स्टार्ट किया गया है और कहीं ना कहीं इससे दिल्ली की जनता को लाभ मिले।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक बसों की संख्या बढ़ाकर लगभग 14,000 तक पहुंचाना है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम करने के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन को और सशक्त बनाया जा सके। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
नगर निगम के उपमहापौर जय भगवान यादव ने आज अलीपुर वार्ड स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके अलावा श्री यादव ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सफाई व्यवस्था को सुधारने और परिसर में पड़े पत्तों को सही तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपमहापौर ने कहा कि निगम नागरिकों को बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्र ने आज झाड़ू मुक्त शहर अभियान के अंतर्गत 20 गॉबलर कूड़ा संग्रहण मशीनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री चंद्र ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मशीनीकृत और तकनीक आधारित सफाई को बढ़ावा देकर मैनुअल सफाई पर निर्भरता को कम करना, कार्यकुशलता बढ़ाना और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये बैटरी संचालित गॉबलर मशीनें बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात की गई हैं, जो कम शोर के साथ पर्यावरण अनुकूल तरीके से कचरा संग्रहण करेंगी। परिषद ने मशीनीकृत सफाई के अंतर्गत सड़क सफाई मशीनें, हाई प्रेशर जेटिंग मशीनें और ई कार्ट समेत कई आधुनिक साधनों को भी शामिल किया है। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा आज फिर शुरू हुई। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक नहीं है और इसका महिला सशक्तिकरण से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने ये दावा किया कि इन विधेयकों को संसद में लाकर चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की निंदा करते हुए श्री राहुल गांधी से माफी की मांग की। श्री राजनाथ ने राहुल गांधी के भाषण से ऐसी टिप्पणियां हटाने को कहा।
इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न सिर्फ देश के विकास में भागीदार हैं बल्कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि सदियों से महिलाओं ने बगैर किसी पहचान की भावना के परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आज नई दिल्ली में दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक नामक संकलन का विमोचन किया। इस संकलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल भर चलने वाले पर्यटन कार्यक्रमों का विवरण है। श्री बेरी ने पर्यटन को बढ़ावा देने में केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अवसंरचना के विकास और स्थानीय क्षमता को उजागर करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि देखो अपना देश और स्वदेश दर्शन जैसी पहलें पर्यावरण को बढ़ावा देने और अवसंरचना को वैश्विक मानकों के और अनुरूप बनाने के निरंतर प्रयासों को ही दर्शाती हैं। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देशभर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अब तक 5 किलो वाले 16,50,000 से ज्यादा सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
घरेलू एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण दिल्ली क्षेत्र की पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 19 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ, 29 नशीली गोलियां और कुछ मादक पदार्थ क्रिस्टल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल होने वाले एक 4-पहिया वाहन को भी जब्त किया है। मामले में आगे की जांच अभी जारी है। दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित युवा स्किल इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत 40 युवाओं को प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये कार्यक्रम पश्चिमी जिले के थाना खयाला में आयोजित किया गया। पुलिस के अनुसार 40 दिनों के प्रशिक्षण के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरण के साथ रोजगार सहायता के लिए इंटरव्यू सत्र भी रखा गया है, जिसमें 2 प्रतिभागियों को नौकरी के ऑफर लेटर प्रदान किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। पुलिस के अनुसार ऐसे कार्यक्रम युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ पुलिस और जनता के बीच सहयोग को भी और मजबूत करते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कल पोसांगीपुर स्थित सरकारी बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और टैगोर गार्डन के स्कूल में 2 नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। दोनों कार्यक्रमों में लगभग 400 छात्रों ने भाग लिया। पुलिस ने छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य पर उसके असर और परिवार तथा समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक किया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि न्यू रोहतक रोड पर अंडरग्राउंड केबल बिछाने की वजह से अगले महीने की 17 तारीख तक इस मार्ग पर यातायात प्रभावित होगा। इस दौरान देवनगर से JB4 ईदगाह तक और लिबर्टी सिनेमा से कमल टी पॉइंट के बीच विभिन्न हिस्सों में केबल बिछाने का काम जारी रहने के कारण इन मार्गों पर यातायात की गति धीमी रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सवेरे 8 बजे से 11 बजे और शाम 5 से 9 बजे के बीच न्यू रोहतक रोड से बचने तथा वैकल्पिक मार्ग के रूप में देशबंधु गुप्ता रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र NDDTC ने आज अपना 38वां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें नशा मुक्ति उपचार, शोध, प्रशिक्षण और नीति निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। सुनिए ये रिपोर्ट।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वीडियो संदेश के माध्यम से राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र को उसकी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। श्रीमती पटेल ने केंद्र के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नशे की समस्या एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, जिससे निपटने के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने नशा मुक्त भारत मिशन को मजबूत करने और नीतिगत मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान में मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में केंद्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र देश भर में नशा मुक्ति सेवाओं के विस्तार, विशेष क्लिनिकों, सामुदायिक कार्यक्रमों और शोध कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आगे भी साक्ष्य आधारित उपचार प्रणालियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरजो की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशंस द्वारा आयोजित व्यापार दिल्ली बदलती दिल्ली कार्यक्रम में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरी बार निर्वाचित होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सिंह का सौम्य व्यक्तित्व, संसदीय परंपराओं के प्रति उनकी निष्ठा और निष्पक्ष कार्यशैली लोकतंत्र की गरिमा को निरंतर सशक्त करती है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने दिल्ली विधानसभा की राष्ट्रीय विधायी सूचकांक पहल का समर्थन किया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लिखे एक पत्र में उन्होंने इस पहल को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इससे देश की विधानसभाओं के कामकाज का मूल्यांकन और सुधार संभव होगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट द्वारा आज नई दिल्ली के हिंदी भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में देश भर से 300 से ज्यादा महिला उद्यमियों ने भाग लिया। राजधानी में आज दिन के समय धूप थी, वहीं शाम के समय तेज बारिश हुई और मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस। कल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रह सकता है 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाई। नगर निगम के उपमहापौर ने अलीपुर वार्ड स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र ने अपना 38वां वार्षिक दिवस मनाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।